दिनभर तारीख 15 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके की कमान उनकी सहयोगी शशिकला के पास आना तय।
All offices, all organizations, all things. There are 64,000 branches of the party.
सीरिया के युद्धग्रस्त अलप्पो में सरकार विरोधी लड़ाके और उनके परिवार वालों को सुरक्षित निकाला जा रहा है।
Today I saw the desperate eyes.
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अप्रैल महीने से हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के महासचिव पद पर शशिकला नटराजन की ताजपोशी तय हो गई है। पिछले हफ्ते जे जयललिता की मौत के बाद से ही इसकी अटकलें लगाई जा रही थी। आज पार्टी ने इसका ऐलान किया। 54 साल की शशिकला लंबे समय से जयललिता के साथ उनके घर में ही रहती आई हैं। हालांकि फिलहाल उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। पार्टी प्रवक्ता सी पोनायन ने कहा है कि शशिकला की पार्टी प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए अगर जरूरी हुआ तो नियमों में बदलाव किए जाएंगे। सीरिया के अलेप्पो शहर से एम्बुलेंस और बसों में घायल विद्रोही लड़ाके वहां से बाहर निकलने लगे हैं। सीरियाई अरब रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस के अधिकारी घायल लोगों तक मेडिकल सेवा पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। विद्रोही लड़ाकों और उनके परिवारों को उनके कब्जे वाले इदलीब और अलेप्पो के कुछ हिस्सों में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के लिए विशेष सलाहकार जॉन इजलैंड ने बताया,
वी फील ऑल स्ट्रांगली दैट द हिस्ट्री ऑफ अलेप्पो थ्रू दिस।
रूस ने भरोसा दिलाया है कि इन लोगों को जल्दी और सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अलेप्पो पर जंग का असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के इतिहास में काला अध्याय है। अलेप्पो को बनाने में 4,000 साल लगे, लेकिन एक पीढ़ी और 4 साल में इसे खत्म कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के लिए विशेष सलाहकार जॉन एजिलैंड के शब्द। इधर भारत में सरकार ने कैशलेस लेनदेन को आसान और सस्ता बनाने के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की है। नीति आयोग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कांत दास ने इस बारे में बताया,
दो स्कीमें अनाउंस की जा रही हैं जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करेगा और ये स्कीम्स हैं लकी ग्राहक योजना जो कि कंज्यूमर्स के लिए अनाउंस की जा रही है और दूसरा दिगी धन व्यापारी योजना जो कि मर्चेंट्स के लिए अनाउंस की जा रही है और इसमें कैश अवार्ड्स कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को दिए जाएंगे जो कि डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए उपयोग करेंगे।
नोटबंदी लागू होने के बाद भारत में लोग कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकार ने कोशिश की है कि कैशलेस लेनदेन को ज़्यादा सरल और आसान बनाया जाए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर के कुछ द्वीपों पर सैन्य उपकरणों की तैनाती पूरी तरह वैध और कानूनी है। एक माइक्रो ब्लॉग पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने इन उपकरणों के बारे में जानकारी दी है। चीन ने इन उपकरणों को देश के लिए ज़रूरी और सुरक्षात्मक बताया है। ब्रिटेन की फर्टिलिटी नियंत्रण संस्था ने एक ऐतिहासिक फैसला कर 3 लोगों के संगम से बच्चों के जन्म की अनुमति दी है। IVF की आधुनिक तकनीक से बच्चा पैदा कराने वाले क्लिनिक इसके लिए ज़रूरी लाइसेंस आवेदन देकर हासिल कर सकते हैं। इस उच्च तकनीक से पैदा हुए बच्चों को कई घातक आनुवांशिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। मोजाम्बिक की पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वैलेंटिना गुएबोजा की हत्या कर दी गई है। वो पूर्व राष्ट्रपति अर्मांडो गुएबोजा की बेटी हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें राजधानी मापुतो में बुधवार शाम को गोली मार दी गई। इस मामले में उनके पति की संदिग्ध भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। 36 साल की गुएबोजा पारिवारिक कारोबार का नेतृत्व कर रही थी जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में है। फोर्स की इस साल की ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में उन्हें 7वीं सबसे ताकतवर अफ्रीकी महिला बताया गया था। इजरायली संसद के स्पीकर यूली एल्डरस्टाइन ने महिला कर्मचारियों के लिए लागू नए ड्रेस कोड का बचाव किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए स्कर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। स्पीकर ने रेडियो पर जारी अपने भाषण में कहा कि जो लोग ये आशंका जता रहे हैं कि महिलाओं को भविष्य में बुरका पहना दिया जाएगा वो गलत सोच रहे हैं। इस फैसले के विरोध में महिलाओं और पुरुषों ने बुधवार को संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। फिलहाल ये रोक निलंबित है और इसे पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से कर रहे हैं। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में निखिल रंजन से सुना, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद AIADMK की कमान किसके हाथ में होगी। आज पार्टी ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए जयललिता की सबसे करीबी रही शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाने की इच्छा जताई है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि पूरी पार्टी, कार्यकर्ता और जनता चाहती है कि शशिकला के हाथों में कमान जाए। वहीं AIADMK लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एम थंबीदुरई ने सभी सांसदों की ओर से शशिकला से कहा कि वो पार्टी की अगुवाई करें, क्योंकि जयललिता के गुजर जाने के बाद पार्टी के महासचिव का पद खाली है। सवाल यह है कि शशिकला के हाथ में पार्टी की कमान आने पर राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। पूरे ब्यौरे के साथ हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
पिछले हफ्ते जब पहली बार अन्ना डीएमके के प्रमुख नेताओं ने शशिकला को पार्टी का महासचिव बनने का अनुरोध किया तो थोड़े सवाल उठे थे। प्रतिक्रिया ये थी कि शशिकला को महासचिव बनने के लिए सिर्फ कुछ ही नेता जोर लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का अभी ये कहना है कि शशिकला पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टी की हर इकाई ने ये मांग की है कि शशिकला पार्टी का नेतृत्व कबूल कर लें। पूर्व मंत्री सी पनैन ने कहा,
ऑल ऑफिसर्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल विंग्स देयर आर 64,000 ब्रांचेस ऑफ द पार्टी।
पार्टी की 64,000 शाखाएं और पंचायत और जिला सचिवों ने प्रस्ताव पारित किया है कि शशिकला पार्टी की महासचिव बने, लेकिन शशिकला ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है। जिस दिन वो इस दरखास्त को मंजूर करेंगी उसके बाद ही पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक बुलवाई जाएगी। ये थे सी पनैन के शब्द। शशिकला पर दबाव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के करीब 30 साल के साथी हैं। दरअसल शशिकला चेन्नई में एक वीडियो कैसेट की दुकान चला रही थी जब उन्होंने अपने पति एम नटराजन से दरखास्त की कि वो जयललिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हैं। नटराजन उस समय IAS अफसर चंद्रलेखा के दफ्तर में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थे। चंद्रलेखा ने यह संदेश अपने दोस्त जयललिता को पहुंचाया जो उस समय प्रचार सचिव थे। जब MG रामचंद्रन गुजर गए और जयललिता को पार्टी से निकालने की कोशिश की गई थी तो उस समय शशिकला जयललिता के बहुत पास आई। उसके बाद शशिकला ने अपने परिवार को छोड़कर जयललिता के पोस्ट गार्डन घर में रहना शुरू किया। दो बार ऐसे मौके आए जब जयललिता ने शशिकला को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन 2011 में शशिकला एक बार फिर से जयललिता के पास वापस आ गई क्योंकि उनके दिल एक दूसरे से जुड़े थे। तो जब शशिकला को पार्टी के शाखाओं से भी समर्थन मिल रहा है तो उनको पार्टी का कमान संभालने पर तमिलनाडु की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हमने यह सवाल कोयम्बतूर आधारित जी सत्यमूर्ति से पूछा। वो अभी तक राजनीति की कड़ी परीक्षा से नहीं गुजरी हैं। आज तक किसी ने उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते नहीं देखा है, ना ही कोई उन्हें भाषण देते हुए देखा है। अभी यह भगवान ही बता सकते हैं कि तमिलनाडु का क्या होगा। ये थे जी सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति को लगता है कि बहुत ही जल्द पार्टी में गौंडर समुदाय के लोग दावा करना शुरू करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में उनके समाज को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है जबकि तेवर समुदाय के लोगों को ज्यादा दिया गया है। ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि शशिकला और मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम तेवर समुदाय से आते हैं। लेकिन सत्यमूर्ति के राय के खिलाफ फ्रंटलाइन मैगजीन के सह संपादक आर.के. राधाकृष्णन कहते हैं,
यू कैन सी दैट इट इज ओनली अ फॉर्मेलिटी बिकॉज इन एनी केस
हम मानते हैं कि वो ज्यादातर पर्दे के पीछे ही रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से जयललिता के सेहत के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पर पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी शशिकला पर थी और आम जनता को ये पता नहीं है कि उनका कोई निर्णय गलत हुआ होगा, तो जाहिर है कि वो पार्टी को चलाएंगी और सबको साथ ले जाएंगी। ये थे आर.के. राधाकृष्णन के शब्द। पूर्व मंत्री पनैन के बयान का मतलब यही है कि ना सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि पार्टी की हर इकाई के लोग भी शशिकला का समर्थन कर रहे हैं। शशिकला का महासचिव बनना तो अभी तय है, लेकिन वो पार्टी और राज्य की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेंगी उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तो जैसा कि आपने सुना कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद AIADMK की कमान शशिकला के पास आना तय हो चुका है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। कार्यक्रम में अब बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। कई दिनों की हां ना के बाद आखिरकार सीरिया के युद्धग्रस्त अलप्पो शहर के पूर्वी हिस्से से सरकार विरोधी लड़ाके और उनके परिवार वालों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सीरिया अरब रेड क्रेसेंट और रेड क्रॉस के अधिकारी घायलों को डॉक्टरी मदद मुहैया करवा रहे हैं। खबरों के मुताबिक लगभग 4,000 विद्रोही लड़ाके और उनके परिवार वाले सुरक्षित निकाले जाने को तैयार हैं। इसके साथ ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि पिछले 4 साल से चल रही अलप्पो की घेराबंदी और युद्ध खत्म हो जाएगा। सीरिया के अलप्पो में चल क्या रहा है? बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए राजेश जोशी से।
रूस के आला फौजी अफसर वेलेरी गेरासिमोव ने बताया है कि युद्ध विराम समझौते के मुताबिक अलेप्पो के एक कोने में समेट दिए गए विद्रोहियों और उनके परिवार वालों को निकालने के लिए 21 किलोमीटर लंबा गलियारा दे दिया गया है। उन्होंने कहा यह फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। मेडिक्स अंडर फायर नाम के संगठन के साथ काम कर रहे हामिश डे ब्रिटन गॉर्डन ने वहां फंसे लोगों को निकालने की इस योजना की जानकारी दी।
The plan is to get them out to the Costello Road north of to the north.
उन्हें कोस्टेलो रोड की तरफ निकालने की योजना है और वहां से 25 किलोमीटर दूर हमारे मुख्य अस्पताल तक उन्हें ले जाया जाएगा। इसके अलावा अलेप्पो से करीब 1,000 घायल लोगों को भी इस अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। बसें तैयार हैं, उनमें जाने वाले लोग तैयार हैं, तो इस समय सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है।
ये थे हामिश डे ब्रिटन गॉर्डन के शब्द। लेकिन अब भी कुछ लोग शहर के इस हिस्से में फंसे अपने नजदीकी लोगों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। हाइद हाइद 4 बरस पहले सीरिया से निकल गए थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनकी बहन अपने पति और बच्चे के साथ अब भी अलेप्पो में फंसी हुई है।
They are waiting and they don't know what will happen. Everyone is basically scared for their lives.
वो लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या होगा। हर आदमी अपनी जिंदगी के लिए चिंतित है कि अगर वो नहीं निकल पाए तो कुछ ही घंटों में वो मारे जाएंगे, क्योंकि सरकारी सेनाएं नजदीक आ रही हैं और वो बदला लेंगी।
व्हाइट हेलमेट्स नाम के संगठन से जुड़े इस्माइल अब्दुल्ला बचाव कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के इस हिस्से में फंसे कई लोग अब मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं।
आज मैंने तड़पती हुई आंखें देखी। उन लोगों की आंखें बता रही थी कि वो शहर छोड़कर जाने को बेताब हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं बची है। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। मेरी तरह तमाम लोग बमबारी से बचने के लिए छिपे हुए हैं।
आप जानते ही हैं कि पिछले 4 साल से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ने के लिए हथियारबंद चरमपंथी लड़ाई कर रहे हैं और रूस और ईरान इस जंग में सीरिया की मदद कर रहे हैं। इसलिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि सीरियाई अधिकारियों ने निकलने को तैयार चरमपंथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। यूरोपीय संघ भी अलेप्पो की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा है कि वो ईरान और सीरिया से आम नागरिकों पर ध्यान देने की अपील करती हैं।
हम दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। मैंने अभी अभी ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ से बात की और साथ ही संयुक्त राष्ट्र से भी कहा कि वो ईरान और रूसी फौजों से कहें कि आम नागरिकों की सुरक्षा की जा सके।
ये थे ईयू की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी के शब्द। बहरहाल जिस तरह पिछले 2 दिन में शांति की संभावना बिगड़ती बनती रही है, उस हिसाब से आने वाला समय अलेप्पो और सीरिया के लिए काफी नाजुक बना हुआ है।
तो सीरिया के युद्धग्रस्त अलेप्पो से सरकार विरोधी लड़ाके और उनके परिवार वालों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। दिनभर कार्यक्रम में एक बार फिर से रुख भारत का करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल यानी कि 2017 के अप्रैल महीने से हाईवे यानी कि राजमार्ग पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला देश के सभी राजमार्गों पर लागू होगा। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के फैसले के मुताबिक अब शराब की दुकानें कम से कम स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर होंगी। इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी और स्टेट पुलिस चीफ को दी गई है। जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य हाईवे को शराब की बिक्री व विज्ञापन से मुक्त होना चाहिए। हमने सभी हाईवे अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि शराब से जुड़े सारे होल्डिंग हटाए जाएं। इन होल्डिंग से ध्यान बढ़ता है और ये बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। सड़कों पर इन होल्डिंग्स का दिखना लालच को उकसाने की जैसा है। पहली बार केंद्र सरकार ने इस मामले में 2007 में राज्यों को नोटिस भेजा था। तो ये फैसला सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से कितना कारगर होगा, आंकड़े क्या कहते हैं, इस खबर पर नजर रखी है हमारे सहयोगी भरत शर्मा ने। भरत शर्मा, सबसे पहले यही बताइए कि ये फैसला क्या कहता है।
अदालत ने साफ कर दिया है कि अब हाईवे के किनारे जितने भी शराब के ठेके होते हैं वो बंद हो जाएंगे। मार्च 2017 तक उन्हें वक्त दिया गया है, उसके बाद 1 अप्रैल 2017 के बाद उनके जो लाइसेंस हैं वो रिन्यू नहीं कराए जाएंगे।
ये तो बात हुई कि अब अप्रैल 2017 के बाद उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे, लेकिन अदालत को ये फैसला आखिरकार देना क्यों पड़ा? सड़क दुर्घटनाओं में शराब के चलते कितनी दुर्घटनाएं होती हैं?
दरअसल इस सिलसिले में काम करने वाले जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो एनजीओ हैं, वो लंबे वक्त से कह रहे थे कि जो हाईवे के ठेके हैं वो एक बड़ी वजह हैं ड्रंकन ड्राइविंग, जो शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से जो हादसे होते हैं उनके लिए जिम्मेदार है काफ़ी हद तक शराब। एक अभी हाल में रिपोर्ट आई थी ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की, उसके मुताबिक 2015 में तकरीबन 5 लाख हादसे हुए भारत में, जिनमें 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हुई और 5 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी थे।
तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आई कि जो ड्रंकन ड्राइव यानी कि शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उसके बाद दुर्घटनाओं की तादाद काफी बढ़ जाती है।
हर 10 में से 8 हादसे ड्राइवर की गलती से हुए और उनमें से 62% ऐसे मामले थे जिसमें वजह ओवर स्पीडिंग या ज्यादा तेज रफ्तार थी। जैसा कि सभी जानते हैं शराब इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार ठहराई जाती है कि ओवर स्पीडिंग, अक्सर शराब पी के लोग काफी तेज गाड़ी चलाते हैं।
कोई विश्व स्तर पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन या इस जैसी अन्य कोई संस्थाओं ने कुछ कहा है?
बिल्कुल, आपने सही पहचाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक शराब पीने से न केवल आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है बल्कि रिफ्लेक्सेस में काफ़ी धीमापन आ जाता है। आप किसी हादसे की तरफ बढ़ता हुआ जो चालक है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, वक्त पर ब्रेक नहीं लगेगी, ऐसे में शराब जो है हादसे के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हो जाती है।
कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं?
देश के ऐसे 5 राज्य हैं जहां 80% सड़क हादसे हुए, इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और उत्तर प्रदेश हैं। ज्यादातर सड़क हादसे इन्हीं यहां पर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और जो प्रदेश के राजमार्ग हैं सर वहां पर हुए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अप्रैल महीने से हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। भरत शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से आंकड़े बताते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से मौतें किस तरह से हो रही हैं। कार्यक्रम में अब भारत की ही और खबर का जिक्र करते हैं। भारत के कैथोलिक चर्च ने कैथोलिक समाज में भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। देश में कैथोलिक धर्म के मामलों में निर्णय लेने वाले संगठन कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इस पर एक पेपर तैयार किया है जिसमें सारे सुझाव दिए गए हैं। और जानकारी के साथ जुबैर अहमद इस रिपोर्ट में।
कैथोलिक समाज में दलितों के खिलाफ भेदभाव कोई नई बात नहीं। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कैथोलिक समाज को धार्मिक और सामाजिक मामलों में मार्गदर्शन देती है। इसकी दलितों और पिछड़े वर्गों की एक शाखा है जिसके कर्ता धर्ता है बिशप देवसागर राज। वो कहते हैं ये पहली बार नहीं है कि हमने कैथोलिक समाज में दलितों के खिलाफ भेदभाव को स्वीकार किया है। हमने 1982 में पहली बार साफ तौर पर और औपचारिक रूप से कहा था कि कैथोलिक समाज में दलितों के विरुद्ध भेदभाव है। ये थे बिशप देवसागराज। भारत में कैथोलिक बिशप्स की 2 साल में एक बार सभा होती है जिसमें भेदभाव को खत्म करने पर चर्चा भी होती रहती है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए अब तक कदम नहीं उठाए गए थे। अब इस संस्था ने कई कदम उठाने का फैसला किया है। इस पर एक पेपर भी तैयार किया गया है। वो कदम क्या होंगे, उनमें से कुछ पर देवसागर राज ने यूं नजर डाली है।
हाउ टू एम्पावर देम एंड गिव देम स्पेस विद इन द चर्च इन द लीडरशिप एंड आल्सो गिविंग
दलितों को कैसे सशक्त बनाएं और चर्च के शासन और लीडरशिप में उन्हें जगह कैसे दें, दलितों और कैथोलिक दलित महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएं। हम सोच रहे हैं कि उन्हें शिक्षा के जरिए और आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत बनाएं। दलित बिशप्स बहुत कम हैं, जरूरत इस बात की है कि और भी दलित बिशप बनाए जाएं। अब भेदभाव खत्म होनी ही चाहिए। ये भारत के संविधान के खिलाफ तो है ही, हमारे धर्म के खिलाफ भी है, ये गुनाह है। ये थे बिशप देवसागराज। भारत में 200 कैथोलिक बिशप्स हैं लेकिन दलित बिशप्स की संख्या केवल 12 है, जबकि 1,90,00,000 कैथोलिक आबादी में 1,20,00,000 दलित हैं। तो क्या ये धर्म की कमजोरी है या इंसान की? देवसागराज कहते हैं कि ये इंसानी कमजोरी है, धर्म का इसमें कोई दोष नहीं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
कैथोलिक समाज में भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है कैथोलिक चर्च ने।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच।
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर, और कार्यक्रम में आज का दिन होता है आपकी चिट्ठियों का। तो बस हाजिर है आपकी चिट्ठियां,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और वंदना का भी।
बिल्कुल मेरा, और आज मैं मुस्कुरा रही हूँ, पिछली बार आपने मुझे टोक दिया था,
उलाहना दिया था। आपके हाथ में एक अंतर्देशी है नीले रंग का, और मैं यहाँ से सिर्फ राइटिंग देख के पहचान सकता हूँ कि ये रामपुर से हमारे श्रोता असद अली
एकदम आपको 10 में से 11 नंबर।
और पहली चिट्ठी उनकी आज लीजिए, क्योंकि वो बहुत शिकायत करते हैं कि हमारी चिट्ठी आप इस्तेमाल नहीं करते।
जी जी।
तो असद अली साहब का क्या कहना है संक्षेप में बताइएगा, लंबी चिट्ठी लिखी
जी। बिल्कुल, इन्होंने बात की है आगे की नए साल की, कि वर्षांत कार्यक्रम में क्या सुनवाएंगे, और कह रहे हैं एक नाटक तो आप जरूर प्रस्तुत करें ही, और साथ में मोहम्मद रफी साहब से जो बातचीत पुराने अंदाज में की गई थी कभी
जी, मोहम्मद रफी साहब से वो बातचीत तो बहुत ही ऐतिहासिक बातचीत है, और हम उसको बीच बीच में सुनवाते रहते हैं। रही बात वर्षांत कार्यक्रमों की, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है
जी। और अगला जो पोस्ट कार्ड है वो है जोगा राम मेघवाल का, चूली डूंगरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान से
जी हाँ
जी। इन्होंने बात की है नोटबंदी की, और इनका ये कहना है कि जो कैशलेस इकोनॉमी है ये बहुत शब्द सुनने में आ रहा है, कृपया विशेष रूप से हमें बताएं कि साइबर ठगी और भ्रष्टाचार वगैरह इनसे बचने के क्या उपाय हैं, इंटरनेट बैंकिंग की राह में क्या समस्याएं हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका कार्यक्रम तो गांव तक भी पहुंचता है और सुना जाता
जी,
है
जी। बिल्कुल, उन्होंने सही सवाल किया, और ऐसे सवाल हमारे तमाम श्रोताओं के दिमाग में है, हमारे दिमाग में भी है, कि अगर कैश यानी नकदी की बजाय डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से अगर आप पूरा अपना काम करेंगे तो कितना सुरक्षित होगा, इसको लेकर के हम बीच बीच में bbchindi.com पर हमने काफ़ी खबरें छापी हैं, जो जानकार हैं उनका विश्लेषण भी छापा है। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो वहाँ देख सकते हैं, और हमारे कार्यक्रमों को आप सुनते रहिए, हम बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करेंगे कि कैशलेस या डिजिटल तरीके से जो भुगतान होता है उसमें कितना खतरा है, उस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है
जी। और जो बाकी जो पोस्ट कार्ड है उनमें अलग अलग कार्यक्रमों की लोगों ने प्रशंसा की है। नरेंद्र कुमार है मेरठ से, और दूसरे साहब हैं अशोक कुमार ठाकुर मालीटोल अदलपुर दरभंगा से, इन्होंने विवेचना और जो इटली पर जो दुनिया जहान कार्यक्रम हुआ तो ये इन लोगों को
कोई,
काफी
कोई
पसंद
खास
है।
विवेचना का इन्होंने जिक्र किया है क्या?
विवेचना में जो है फिरोज गांधी
के पर जो रेहान फजल ने विवेचना की थी उसकी बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, बहुत सारी चिट्ठियों का हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं, वो नाम भी हम नहीं ले पाए हैं उन श्रोताओं का, लेकिन वो विवेचना काफी पसंद की गई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और चिट्ठियां भी है, ईमेल भी है,
ईमेल है। ये है नरेंद्र आचार्य भोपाल मध्य प्रदेश से, कहते हैं कि पहला पत्र है और तब से सुनता रहा हूँ जब वियतनाम यूएस युद्ध का समय
अमेरिका वियतनाम युद्ध जी
जी, और कहते हैं कि बांग्ला और उर्दू जो कार्य सेवा है वो भी सुनते रहे हैं, और इनका कहना है कि उनका कहाँ सुन सकते हैं उसका जरा लिंक देने का कष्ट करें।
हाँ, ऑनलाइन तो बिल्कुल कार्यक्रम सुन ही सकते हैं आप, हमारी वेबसाइट पे आइए, बीबीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें बांग्ला के कार्यक्रम, उर्दू के कार्यक्रम, नेपाली के कार्यक्रम, वो सब आप ऑनलाइन सुन सकते हैं
जी। एक और ईमेल लेना चाहूंगी, पीयूष गुप्ता साहब का है, चूंकि नोटबंदी की बार बार चर्चा हो रही है, ये कहना है कि मैं बैंक अधिकारी हूँ
जी,
और मेरी शिकायत ये है कि आपने बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को जनता की आंखों से एकदम ओझल कर दिया है, लोगों का गुस्सा हम पर ही टूट रहा है।
पीयूष गुप्ता साहब, आप खुद एक बैंक कर्मचारी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, और आपकी ये शिकायत है कि हमने आपकी समस्याओं को ओझल कर दिया है। दरअसल समस्या एक हमारे पास ही आ रही है कि बैंक में काम करने वाले जो भी अधिकारीगण हैं या कार्यकर्ता हैं वो हमसे ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाह रहे हैं, अपने नाम से या अपनी आवाज़ से या वीडियो में।
हमने 2-3 बार
कोशिश की थी कोई, क्योंकि सबको अपनी नौकरी की भी चिंता होती है, ये चिंता होती है कि मैं अगर कोई बात ऐसी कह गया जिससे गड़बड़ी हो जाए तो लोग सतर्क रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने अनुभव बताना चाहें तो हमें ज़रूर लिखिएगा और हम आपसे संपर्क करेंगे, और आपको क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये हम जरूर अपने श्रोताओं के सामने रखेंगे
जी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से एक आखिरी ईमेल का वक्त है हमारे पास, ये हैं मोहम्मद रजा, कहते हैं कि आपके कार्यक्रमों में जो परिवर्तन आपने किए हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ते। कभी कभी कोई विशेष खबर आ जाती थी तो एक कार्यक्रम उसी में निकल जाता था, पर कम से कम दूसरे कार्यक्रम में हम बाकी खबरें सुन पाते थे।
तो मोहम्मद रजा साहब का तो ये कहना है कि ये जो दो कार्यक्रम बंद हुए वो गलत हुए, लेकिन जिन सज्जन की चिट्ठी अभी अभी आपने पढ़ी वंदना जी, यानी इलाहाबाद बैंक के अधिकारी पीयूष गुप्ता साहब, उनकी जो दो लाइनें आपने नहीं पढ़ी वो ये हैं कि आपने दो कार्यक्रम बंद करके अच्छा ही किया, क्योंकि दोनों में लगभग समाचार दोहराए ही जाते रहे थे जिससे हमारा समय व्यर्थ होता था।
यानी ये सुनते थे दोनों,
ये सुनते चारों प्रोग्राम जो सुनते रहे होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि कुछ कुछ रिपोर्टें जो है वो दूसरे प्रोग्राम में हम रिपीट करते थे। कई बार एक घंटे के दौरान खबरें बदलती नहीं थीं और कुछ नया नहीं होता था कहने के लिए, इसलिए पुराना कार्यक्रम ही हमको रिपीट करना पड़ता था लगभग
लगभग।
तो वो आपका अलग अलग विचार है और जो फैसला है वो तो है ही है आपके सामने, आप सहयोग बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं आपको पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली, कार्यक्रम में खेल की खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन एक खबर आपके के सामने रख रहा हूं जो कि bbchindi.com से मैं आपको सुना रहा हूं। लंदन में एक महिला के फ्रीज किए हुए अंडाशय ऊतकों को फिर से स्थापित करने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी घटना है। जब ये महिला बच्ची थी तभी उसके अंडाशय ऊतकों को सुरक्षित रखा गया था। बचपन में ही अंडाशय ऊतकों को निकालने के बाद फिर से स्थापित करके माँ बनने की ये दुनिया की पहली महिला है। और ये जो महिला है इनका नाम है मोजा अल मातुरुशी, इनकी उम्र 24 साल है। ये खबर अगर आप पढ़ना चाहें तो bbchindi.com पर यह खबर मौजूद है। और कार्यक्रम में अब बात करेंगे खेल समाचारों की। आज राखी शर्मा मौजूद हैं। राखी, सबसे पहले बताइए कि शुरुआत कहां से कर रहे हैं?
जी, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जा रहा है लखनऊ में, और भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया आज क्वार्टर फाइनल का, भारत ने स्पेन को हरा दिया है 2-1 से। आखिरी लम्हों तक ये मैच चला, एक वक्त लग रहा था कि पेनल्टी शूटआउट तक जाएगा, लेकिन भारतीय जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं उन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया और मैच खींच लिया स्पेन की पकड़ से। इस जीत में भारत की तरफ से सिमरन प्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागे। हालांकि मैच में भारत की कई कमियां भी दिखाई दी, जिसमें से एक रहा पेनल्टी कॉर्नर टीम ने काफी मिस किए। शुरुआती 10 मिनट में ही भारत को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिल गए जिन्हें भारत ने गोल में तब्दील करने में उसके खिलाड़ी नाकाम रहे। पहला गोल स्पेन की तरफ से 23वें मिनट में हुआ। हाफ टाइम तक स्पेन ने भारत पर अपनी पकड़ कायम रखी। दूसरे हाफ में सिमरनजीत सिंह ने मैच में भारत की वापसी कराई। इसके बाद भारत ने आक्रामक खेल दिखाया। मैच खत्म होने से महज 4 मिनट पहले हरमनप्रीत के गोल से भारत ने 2-1 से बढ़त बनाई, जिसे अंत तक बरकरार रखा। मैच को लेकर हमने बात की भारत के पूर्व खिलाड़ी एमके कौशिक साहब से।
बिल्कुल, जीत की सभी को उम्मीद थी, लेकिन मेरे को तो 2 गोल के मार्जिन से जीत की उम्मीद थी, लेकिन आज स्पेन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया स्पेशली फर्स्ट हाफ में, और एक पेनल्टी कॉर्नर लिया, उससे गोल किया और फिर पीसी को रोकने की बड़ी क्षमता दिखाई, और टेक्टिकल मूवमेंट्स भी उनकी थोड़ी सी बेहतर नजर आई टूर्नामेंट में, और हम थोड़े से उसमें पीछे रहे। और सेकेंड हाफ में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अटैकिंग हॉकी खेली, तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ का प्रदर्शन अच्छा होने से ही हम जीत की तरफ पहुंचे सेमीफाइनल में, लेकिन हमें कल के लिए बहुत लेसन सीखना होगा।
हमने भारत के हॉकी मैच का तो जिक्र कर लिया, पीवी सिंधु का एक मैच होना है।
बिल्कुल, उससे पहले मैं बता दूं कि कल भारत विश्व कप हॉकी में कल ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में भिड़ेगा, और पीवी सिंधु का जहां तक सवाल है तो विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स में वो खेल रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका मुकाबला होगा चीन की सू यू के खिलाफ।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। सीरिया के अलेप्पो शहर से एम्बुलेंस और बसों में घायल विद्रोही लड़ाके वहां से बाहर निकलने लगे हैं। सीरियाई अरब रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस के अधिकारी घायल लोगों तक मेडिकल सेवा पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। विद्रोही लड़ाकों और उनके परिवारों को उनके कब्जे वाले इदलीब और अलेप्पो के कुछ हिस्सों में सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। भारत में सरकार ने कैशलेस लेन देन को आसान और सस्ता बनाने के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर के कुछ द्वीपों पर सैन्य उपकरणों की तैनाती वैध और कानूनी है। ब्रिटेन की फर्टिलिटी नियंत्रण संस्था ने एक ऐतिहासिक फैसला कर 3 लोगों के संगम से बच्चों के जन्म की अनुमति दी है और मोजाम्बी की पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वेलेंटिना गुएबुजा की हत्या कर दी गई है। वो पूर्व राष्ट्रपति अर्मांडो गुएबुजा की बेटी हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे मनीष और उनके साथ थे तिलक राज भाटिया। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।